कम होती जाती हैं, टेम्पररी हो जाती हैं। तो ये स्पष्ट करती है बात कि आंतरिक खुशी जो है हमें भौतिक साधनों से नहीं मिलती है, लेकिन उसके लिए आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करना जरूरी है। सुख और दुख की अनुभूति करना ये हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। जब हमारे मन में बहुत सुंदर संकल्प चलते हैं, सकारात्मक संकल्प चलते रहे हैं, पवित्र संकल्प चलते हैं, उसके आधार से हमें सुख की अनुभूति होती है, जिससे हम स्वयं को स्वर्ग में महसूस करते हैं। लेकिन किसी कारण नकारात्मक संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो दुख की फीलिंग हमें होती है, जिससे हम स्वयं को नरक में अनुभव करते हैं। तो सुख की अनुभूति करने के लिए हमें सकारात्मक चिंतन मन में करने की कला को सीखना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक चिंतन करना, इसकी टेव डालनी जरूरी है, जिसके लिए हमें राजयोग बहुत मदद करता है। दूसरी बात, आज हम देखते हैं इस दुनिया में वर्कलोड बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही हैं, उसके कारण हमारे मन में स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलते हैं कभी कभी। तो जो भी हमारे मन में संकल्प चलते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर एक संकल्प का प्रभाव हमारे हर एक बॉडी के सेल पर और टिश्यूज पर होता है। साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है, 75 ट्रिलियन सेल्स आर इन ह्यूमन बॉडी, और हर एक संकल्प का बहुत गहरा प्रभाव हमारे बॉडी के सेल पर और टिश्यूज पर पड़ता है। जब हमारे मन में नकारात्मक संकल्प चलते हैं, तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारी बॉडी के संस्थान पर चल पड़ता है, उसके कारण हमें फिजिकल डिसीजेस अनुभव हो जीवन में होते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है 80% डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक डिसीजेस, अर्थात वो रोग जो है पहले मन में क्रिएट होते हैं और वो तन में हमारे ट्रांसफर होते हैं। तो राजयोग के अभ्यास से अगर हम सकारात्मक संकल्प क्रिएट करना सीखते हैं, तो जिससे सकारात्मक प्रभाव हमारे मानसिक शारीरिक संस्थान पर पड़ेगा, उसके कारण हमें अपने रोगों का उन्मूलन उपचार स्वयं ही कर सकते हैं, जिसको मेडिकल साइंस में फेथ हीलिंग कहते हैं। वी कैन बी आवर ओन डॉक्टर, वी कैन क्योर आवर ओन डिसीजेज बाय क्रिएटिंग पॉजिटिव थॉट्स इन आवर माइंड। तो ये हमें बहुत जरूरी है, मन में बहुत पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करना, पावरफुल संकल्प क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं आज टेंशन और स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं 2006 में रशिया गया था। रशिया में मास्को में एक यूनिवर्सिटी में 250 युवाओं के साथ संबोधन कर रहा था कि ऐसे जीवन में, बिजी जीवन में हमें आधा घंटा या कुछ एक मिनट राजयोग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो प्रवचन के बाद एक बहुत स्मार्ट स्टूडेंट खड़ा होकर पूछने लगा कि व्हाई यू आर इंसिस्टिंग अगेन एंड अगेन फॉर प्रैक्टिसिंग दिस राजयोगा मेडिटेशन, टेल मी द सीक्रेट, आई डोंट नीड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम क्रिएटिंग माई गुड कैरियर, व्हाई आई नीड टू प्रैक्टिस दिस राजयोगा मेडिटेशन, मुझे क्यों जरूरत नहीं इस राजयोग के मेडिटेशन की। मैंने एक छोटा सा उदाहरण उनको दिया, छोटा सा, बहुत प्रैक्टिकल। आपके पास सेल फोन है, मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ कारोबार की बातें कर रहे हैं, जितना देर तक बातें करेंगे धीरे 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 मोबाइल की बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, डाउन होगी। और जिस समय मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, आखिरी लाइन बचती है, उस समय आदमी बेचैन हो जाता है, चाहे एयरपोर्ट पर है, चाहे ट्रेन में सफर कर रहा है, वो ढूंढता है कहां चार्जर है, कहां इसकी प्लग पिन है, कहां मैं अपना मोबाइल फोन चार्ज करूं, क्योंकि ये मोबाइल मुझे धोखा दे सकता है, मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज भी पहुंचाने में धोखा दे सकता है। तो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मोबाइल वी नीड टू रिचार्ज द बैटरी ऑफ मोबाइल एवरी डे, तभी वो मोबाइल बैटरी, मोबाइल हमें मदद कर सकता है। ऐसे ये शरीर मोबाइल है और आत्मा इसकी बैटरी है। तो जैसे शारीरिक ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए हम तीन बार भोजन करते हैं, बढ़िया नाश्ता, बढ़िया डिनर, बढ़िया लंच करते हैं, एक बार भी अगर हम मिस करते हैं तो हम थकान की महसूस करते हैं। तो शारीरिक ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए शारीरिक भोजन की आवश्यकता है, वैसे मानसिक ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए आध्यात्मिक शक्तियों का भोजन की आवश्यकता है। तो परमात्मा जो सर्व शक्तियों का सागर है, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रचंड स्रोत है, उनके साथ जब हम मन की तार जोड़ते हैं, संकल्प उनके साथ जोड़ते हैं, तो संकल्प के माध्यम से आत्मा में ऊर्जा आने लगती है और धीरे 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 स्पिरिचुअल एनर्जी की लेवल हमारी बढ़ती जाती है, तो जीवन का आनंद हम लेना सीखते हैं। जैसे आपको मनपसंद भोजन खाने के बाद आप चेहरा देखेंगे, एकदम खुशनुमा चेहरा होता है, क्या बढ़िया भोजन आज बनाया। ऐसे ही परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करते हैं, शक्तियां प्राप्त करने के बाद हम सच्चे सुख की, आनंद की अनुभूति हमें जीवन में होने लगती है। तो बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए ये राजयोग का अभ्यास डेली हमें करना जरूरी है। ये राजयोग किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, केवल आत्मा समझना, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये हर कोई कर सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, आपसे नम्र निवेदन है कि जो भी यहाँ सभा में आए हैं उनको राजयोग का अभ्यास आधा घंटा जरूर करना चाहिए, तो आपके जीवन में बहुत सुख की, शांति की अनुभूति आप कर सकते हैं। हर इंसान को, हर आत्मा को शांति की अनुभूति की प्यास रहती है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी स्टेटस का हो, किसी की धर्म का भी हो। मुझे याद है 2006 में अब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमारे प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने माउंट आबू में आए, दर्शन दिया, वहां दो दिन रहे और इस राजयोग का अभ्यास करके सच्ची मन की शांति की अनुभूति की। इतने नंबर वन साइंटिस्ट, उनको भी शांति की अनुभूति की आस रही। कहने का मतलब हर इंसान को शांति चाहिए, शांति की अनुभूति करने के लिए वो शांति सागर से हमें कनेक्शन जोड़ना जरूरी है। क्योंकि हम अपने व्यक्तित्व को मेंटेन करना चाहते हैं, हर इंसान अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, मेरी पर्सनालिटी टावरिंग पर्सनालिटी हो, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो, इंस्पायरेबल पर्सनालिटी हो, शावरिंग पर्सनालिटी हो, लेकिन फिजिकल पर्सनालिटी कितनी भी सुंदर आपकी हो तो भी मैग्नेटिक पर्सनालिटी क्रिएट करने के लिए फिजिकल पर्सनालिटी के साथ साथ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को मेंटेन करेंगे तभी आपकी पर्सनालिटी चुंबकीय बन सकती है। उसके लिए आवश्यकता है कमियों को निकालना, विकारों को निकालना और अच्छाइयों को धारण करना। मैं 93 में जर्मनी में गया था और एक अपने साइंटिस्ट की सभा में मैं बैठा था, उनके साथ आध्यात्मिक चर्चा कर रहा था। तो एक सभा में साइंटिस्ट खड़ा होकर पूछने लगे कि मेरा एक प्रश्न है जिसका जवाब मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया, इसलिए मैं बड़ा परेशान रहता हूं, क्या मुझे आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे। मैंने कहा भाई बताओ कौन सा प्रश्न है आपका। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा है, बड़ा सिंपल है। मेरा प्रश्न यह है कि दिन प्रतिदिन जो है इस संसार में आध्यात्मिक संस्थाएं एक तरफ बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ मनुष्य के चरित्र का पतन गिरता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। अगर आध्यात्मिक संस्थाओं का नंबर बढ़ रहा है तो मनुष्य के चरित्र का उत्थान होना चाहिए, लेकिन उत्थान के बजाय पतन हो रहा है। Why this is so? Please tell me.
एक बार कहा था,
मैंने बहुत सिंपल उनको जवाब दिया कि किसी भी धार्मिक संस्था में आप जाएंगे सबका मजहब एक ही है, बुराइयों को छोड़ना है, अच्छों को धारण करना है, वैल्यूज को जीवन में धारण करना है। वही ज्ञान यहाँ विद्यालय में ये दिया जाता है, कोई नया ज्ञान दूसरा ज्ञान यहाँ नहीं दिया जाता है। लेकिन ज्ञान अर्थात युक्ति, युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति और दिव्य गुणों की प्राप्ति। तो युक्ति तो हमारे पास होती है लेकिन मिसिंग एरिया है शक्ति, कहां से प्राप्त करना है, शक्ति पाने का तरीका क्या है, वो इस विद्यालय में उपलब्ध है। सर्व शक्तियों के सागर निराकार परमात्मा शिव यहां उपलब्ध है, जिनके साथ जब कनेक्शन जोड़ते हैं शक्तियां प्राप्त करते हैं तो ऑटोमेटिक विकारों से मुक्ति होती है और दिव्य गुणों की प्राप्ति हमारे जीवन में होती है। इसलिए हमें परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उनके साथ कनेक्शन जोड़ना और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करना ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए राजयोग का अभ्यास करना ये बहुत जरूरी है। जैसे हर एक व्यक्ति को भोजन जरूरी है वैसे ये आध्यात्मिक शक्तियों का भोजन हर एक आत्मा को आवश्यक है। इसलिए ये जीवन बिताना जीना बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। कोई भी इस संसार में ऐसी आत्मा नहीं है जिसमें शक्तियों का भंडार नहीं है। आप इससे सहमत है या नहीं बोलो। जो नए भाई यहां सभा में है बोलो, बैठे हैं मानते हैं इस कंसेप्ट को, हर एक आत्मा में बहुत शक्तियां हैं। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं उससे आपको आइडिया आएगी कि सचमुच हमारे में बहुत शक्तियां होती हैं, प्रतिभा होती हैं। एक किसान अपने खेती में सवेरे से लेकर शाम तक बहुत मेहनत का काम करता है, हल चलाने का काम करता है, शाम को वो थका हुआ अपने घर पहुंचने जाता है, लेकिन उसको एक जंगल पास करना होता है। बड़े थके थके हारे जिससे वो जंगल पार कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन एक घटना उसके साथ घटती है, अचानक सामने से शेर आता हुआ उसको दिखाई देता है। जब शेर की आंखों से उसकी आंखें टकराती हैं तो तुरंत वो इतना जोर से भागने लगता है जो जिंदगी में कभी नहीं भागा। और भागकर वो अपने को शेर से बचाकर बचाने में सफलता भी प्राप्त करता है और वो आगे बढ़ता है। अभी नोटवर्दी बात ये है कि वो थका हुआ हारा व्यक्ति, उसके पास इतनी ऊर्जा कहां से आई? वो उसकी ऊर्जा उसके तन में ही थी, उसके मन में ही थी, लेकिन वो सुषुप्त थी, सोई हुई थी। उस घटना ने उसकी ऊर्जा को जागृत किया और उसने उसका प्रयोग किया और वो शेर से बचाने में सफल हुआ। तो ऐसे हरेक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है, लेकिन उस शक्तियों को जगाने का काम केवल ये राजयोग करता है। राजयोग हमारे सोमान को ऊंचा उठाता है और सोमान के आधार से ही शक्तियों का उजागर होता है। उसकी शक्तियां हमारी ऑटोमेटिक डेवलप होती हैं, हमारे व्यक्तित्व का निखार हम करते हैं। इसलिए जो भी हरेक आत्मा में प्रतिभा है, क्षमता है, अद्वितीयता है, जो भी ऊर्जा है, उसको जैसे कि हनुमान को कहा गया कि भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, ये सागर लांद कर तुम्हें उस पहाड़ से संजीवनी बूटी लानी है। वो कहता है भाई ये कैसे हो सकता है? जब उनको हनुमान को उसके किए हुए कर्मों का प्रताप का याद देते हैं, स्मृति देते हैं, उसकी ऊर्जा जागृत हो जाती है, तो वह असंभव कार्य भी संभव करता है। समुद्र को लांद कर वो पहाड़ को ही उठाकर लाता है। तो हनुमान अर्थात जिसको अपने पर अनुमान नहीं होता है, रिंचक मत्रा भी डाउट नहीं होता है, इस संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। जितना आत्मविश्वास हमारा जागृत होता है, उतनी शक्तियां हमारी उजागर होती हैं और ऑटोमेटिक हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। इसलिए राजयोग अभ्यास करने से आत्मा की एनर्जी लेवल भी हमारी बढ़ती जाती है। तीसरी बात है, आज मनुष्य जो है हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, कौन सी बात करना है, निर्णय लेना है नहीं लेना है, वो कंफ्यूजन में रहता है। तो ये राजयोग के अभ्यास से बुद्धि हमारी बहुत क्लीन बनती है, क्लियर बनती है। उसके कारण क्विक जजमेंट लेते हैं और करेक्ट जजमेंट लेने की क्षमता हमारी बढ़ती है। इसलिए राजयोग का अभ्यास से कंफ्यूजन मिट जाता है और बहुत अच्छी तरह से निर्णय शक्ति हमारी बढ़ती है। और दूसरी बात है फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ती है। आज हम हर एक परिस्थिति में स्वयं को ढालना सीखते हैं तो खुद हम डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। जैसे कहते प्योर गोल्ड ही मोल्ड होता है, तो इस राजयोग के अभ्यास से आत्मा में जो अशुद्धता है वो निकलती है, आत्मा की वो प्योर गोल्ड बनती है और मोल्डिंग पावर बढ़ने से हर परिस्थिति में वो फ्लेक्सिबल बनती है और एडजस्टमेंट करने की शक्ति उसकी बढ़ती है, जिससे वो हमेशा हर परिस्थिति में सुख की अनुभूति करता है, न किसी से डिस्टर्ब होता है न किसी को डिस्टर्ब करता है। इसलिए ये बहुत सुंदर फायदे हमें इस राजयोग से होते हैं। लेकिन आत्मा का सशक्तिकरण करने के लिए परमात्मा जो सर्वशक्तियों के सागर हैं, उनसे कनेक्शन जोड़ने से ऑटोमेटिक शक्तियों का कलेक्शन होता है और जितना शक्तियों का कलेक्शन बढ़ता है उतना आत्मा का सशक्तिकरण बढ़ता है, आत्मा ऊर्जावान हो जाती है। और जब आत्मा ऊर्जावान होती है तो कोई भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं उन समस्याओं को सहज रीते से पार करती हैं और अपने लाइफ को स्मूथ लाइफ लीड करने का वो प्रयास करती रहती हैं। तो जीवन में सच्चे सुख शांति की अनुभूति करने के लिए राजयोग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस राजयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो परमात्मा सारे संसार के क्रिएटर डायरेक्टर कंट्रोलर हैं, उनके साथ डायरेक्ट मधुर मिलन मनाने के, परमात्मा के साथ डायरेक्शन डायरेक्ट मिलन मनाने की ये भी उपलब्धि इस राजयोग के द्वारा होती है। ये मैं आपको अनुभव के आधार से कहना चाहूंगा। तो जो भी यहाँ हमारे मेहमान बैठे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, कीन रिक्वेस्ट है, बिजी हर इंसान है, बिजी लाइफ में भी हमें टाइम निकालना चाहे तो निकलता है। कहते हैं इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ देयर इज नो विल देयर इज नो वे। चाह जहां होती है राह निकलती है। इसलिए थोड़ा सा टाइम अगर आप निकालेंगे इस राजयोग्य अभ्यास के लिए तो जीवन का आप भरपूर आनंद ले सकेंगे, ये मैं अपने अनुभव के आधार से आपको जरूर कहूंगा। और विशेष माउंट आबू से आने के कारण आप महानुभावों को हम माउंट आबू का भी निमंत्रण लेते देना चाहते हैं, क्योंकि इस धरती पर अगर सचमुच स्वर्ग देखना है तो माउंट आबू को आप जरूर एक बार विजिट कर लीजिए। स्वर्ग उसको कहते हैं जहां नेचुरल ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, और वहां का कॉम्बिनेशन जो है माउंट आबू में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो हम आपको निमंत्रण उसका भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। मैं भाइयों से निवेदन करूंगा कि भले आप भोजन के लिए प्रस्थान करें, माताएं सभी बैठी रहेंगी थोड़ी देर। एक बज गया है, भोजन का समय हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जोरदार तालियों के साथ आतम भाई जी को। जो भी सेल्फ एम्पावरमेंट में यहां पधारे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताएं खड़े हो जाएं जरा, सभी माताएं खड़े हो जाइए। बहुत देर से बैठे हुए आप लोग, थोड़ा व्यायाम कर लेंगे हम 5 मिनट। जो भी सेवा में भाई बहने हैं वो भोजन खिलाने की सेवा में जाएं। सभी भाई भले प्रस्थान करें। सभी माताएं खड़े खड़े थक गए थे कि बैठे बैठे थक गए थे? आप माताओं की विशेषता, और आप माताओं को विशेष बोनस मिलने वाला है, अभी गिफ्ट मिलने वाली है आपकी। गिफ्ट चाहिए? चाहिए। खड़े खड़े थक गए थे आप लोग, थोड़ा व्यायाम करना है 2 मिनट कि नहीं? आतम भाई आप सभी से विशेष मिलेंगे। सभी यहां आ जाए, माताएं बहने पीछे से, माताएं सब यहां आ जाइए, बहने भाई मैं सॉरी सभी बहने आ जाए। सामने वाले तो सामने है ना, वो सामने क्यों आ रहे हैं? पीछे वालों को सामने बुलाया है।
बैठो बैठो सामने बैठो, सभी माताएं सामने। आपके मतलब की बातें हम सुनाने आए आपको, बढ़िया, जो आपके काम में आएगी। इसलिए दूर दूर बैठने से क्या होता है, लगता है गैलरी में बैठे हैं, दूर बैठे हैं, और नजदीक में बैठने की वासना अपनी होती है। बैठो कुर्सियों पर बैठो आराम।